आपका एक आर्टिकल है 1993 में शाया हुआ, आपकी किताब के अंदर मौजूद है, इस्लाम और तसव्वुफ के ज़ेर उनवान। मैं चाहता हूँ कि दो पहलुओं से अपने सवाल को आपके सामने रखूँ। पहला पहलू ये है कि हमारे जो सूफिया किराम हैं, इनकी किताबें हम पढ़ते हैं, बड़ा बिखरा हुआ, बड़ा फैला हुआ लिटरेचर है इनका। सैकड़ों की तादाद में बड़े सूफिया गुजरे हैं, किताबें हैं उनकी, लिटरेचर हज़ारों सफ़ात हैं। ये बात तो आपकी समझ में आती है एक तालिब इल्म को कि जब आप उनकी किताबों में से कोई चीज़ कहीं से लें तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इश्कालात, और ये इश्काल आपने पहली दफ़ा नहीं रखा, इमाम ने, तैमिया ने, इब्ने कय्यम ने, एक पूरी रिवायत है उम्मत में जो उन्होंने सूफिया के अफकार पर नक्त किया है। ये सवाल लोग पूछते हैं कि उन्हीं सूफिया की किताबों में अगर आप और जगहों पर देखें जाकर, तो वो तो ये बात कर रहे होंगे कि रसूल सल्लम की इताअत ही करनी चाहिए, आप ही की शरीयत की पैरवी होगी, तो उन बातों की रोशनी में इनकी जो ये इस तरह की बातें हैं, इनको तफर्रुद कहकर, इनको वजद या हाल की कैफियत में निकले हुए को अल्फाज कहकर कुछ तौजीह करके बंदा खामोशी इख्तियार कर ले तो बेहतर है। आपने एक इल्मी तरीका अपनाया उन पर नक्त का। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या कोई तौजीह करके सरफ नज़र नहीं किया जा सकता था, एक बात, और दूसरी बात को भी आवाज़ कर दीजिएगा, टाइम भी हमारे पास कम है, कि इसके बावजूद कि आप उन पर तनकीद करते हैं, आपका एक मनहज फ़िक्र उन पर तनकीद का, वो लिखा हुआ है आपने किताब में, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका एक इंसानियत की सतह पर कंट्रीब्यूशन, वो कितने पाकबाज और सतुदा सिफात लोग थे, उनके बारे में कोई आपके दिल में इस्तिख़फ़ाफ़, कोई उनकी तहकीर, कोई उनकी तनकीस, कोई इस तरह का कोई रवैया या बात तो नहीं है ना?
अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं उन सब लोगों को जिनके मैंने वहाँ हवाले दिए हैं इल्म के असातीन समझता हूँ, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। कभी मेरे वहम व गुमान में भी नहीं आया कि मैं उनके ईमान के बारे में कोई तबसरा करूँ। मेरे पूरे मजमून में आप देख लीजिए, उनका ज़िक्र नहायत इज्जत के साथ किया गया है। मेरा ये तरीका नहीं है, देखिए मैं फुकहा पर भी बाज़ औक़ात तनकीद करता हूँ, मैं किसी मुहद्दिस की तहकीक पर भी तनकीद करता हूँ। तनकीद तो इल्म को आगे बढ़ाने का ज़रिया होती है, लेकिन ये कि मैं किसी का शख्सी लिहाज से इस्तिख़फ़ाफ़ करूँ, जिन लोगों का वहाँ ज़िक्र किया गया है वो इमाम गज़ाली हों, वो शेख अकबर मोहियुद्दीन इब्ने अरबी हों, वो शाह इस्माइल शहीद हों, उनकी खिदमात, उनका काम, उनकी शख्सियत, ये हमारी उम्मत की इल्मी मीरास है, उसकी उसी तरह इज़्ज़त होनी चाहिए, ये ज़ेर बहस नहीं। लेकिन जिस वक्त कोई फ़कीह हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई आलिम हो, वो दीन पर गुफ्तगू करेगा, तो जो गुफ्तगू उसने की है उसका जायज़ा लिया जाएगा। यानी इसमें आप उसकी शख्सियत नहीं देखेंगे, ना शख्सियत पर कभी कोई फतवा लगाना या उसके कुफ्र ईमान का फ़ैसला करना मेरे पेश नज़र रहा है। मैंने कोई ये नहीं किया कि मुझे शेख अकबर के बारे में कोई फतवा देना है या इमाम गज़ाली के बारे में कोई फतवा देना है, ये तो मेरा मिजाज ही नहीं है, इससे मुझे क्या दिलचस्पी है। लेकिन जिस वक्त मैं दीन पर काम करूँगा तो मैं ये बताऊँगा कि दीन में क्या चीज़ है कि जो काबिल कबूल होगी, क्या चीज़ है जो दीन के दायरे के अंदर है लेकिन मैं उससे इख्तलाफ कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए कई सतहें होती हैं इख्तलाफ की। मसलन आपको जुज़वी इख्तलाफ होता है। अब हमारे तमाम फुकहा बदकारी की सज़ा को जिस तरह से बयान करते हैं, मैंने उससे इख्तलाफ कर दिया, ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि मैं उन जलीलुल कदर अहले इल्म के मामले में ये कह रहा हूँ कि वो दीन के इल्म के असातीन नहीं हैं, उनकी ये गैर मामूली हैसियत है जिसके बारे में मैं कोई इस्तिख़फ़ाफ का तरीका इख्तियार कर रहा हूँ, अलायाज़ु बिल्ला, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? असल में तो ये लोग हैं कि जिनकी कायम करदा रवायत हम तक दीन पहुँचाने का ज़रिया बनती है। मैं तो अपने मुआसरीन में से किसी साहिब इल्म के बारे में इस्तिख़फ़ाफ़ का एक जुमला कहना भी ये एक गुनाह समझता हूँ, इसलिए इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। ना किसी साहिब इल्म पर कोई मनफी तबसरा करना मकसूद है, ना उस पर कोई फतवा लगाना मकसूद है, ना उसमें कोई उसको गुमराह करार देना मकसूद है। बात ज़ेर बहस है, मेरे यहाँ कभी भी फ़र्द ज़ेर बहस नहीं आता, बात ज़ेर बहस है। वो बात अबू हनीफा की है, वो बात इमाम शाफ़ी की है, वो बात इमाम मालिक की है, बात ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रवायत बयान करते हैं इमाम बुखारी, तो जब हम इमाम बुखारी की किसी रवायत पर इल्मी तनकीद करते हैं तो ये इल्मी तनकीद होती है, उस पर की जाती है। बाज़ औक़ात ये तनकीद जुज़वी होती है, वो तो हर शख्स पर होती है, कोई भी उससे बचा हुआ नहीं है, मुहद्दिस पर भी होगी, फ़कीह पर भी होगी, आलिम पर भी होगी। बाज़ औक़ात ये उसूली होती है, بعض اوقات یہ اساس میں ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ پورے دینی فکر اور نظام پر ہوتی ہے. تو وہ تنقید اصل میں اس پورے نظام فکر پر کی گئی ہے. اس میں کسی ایک فرد کا کوئی اقتباس لے کے اس کو کٹہرے میں کھڑے کرنا مقصود ہی نہیں ہے. اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اسی وجہ سے وہاں میں نے کسی ایک فرد کو موضوع نہیں بنایا. نہ وہ امام غزالی پر کوئی مقالہ ہے, نہ وہ ابن عربی پر کوئی مقالہ ہے. اس میں بحثیت مجموعی, یہ جو علم باطن کے بڑے لوگ ہیں, ان کی چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پوری کی پوری تصویر ہے. اس کو آپ اسلام کے مقابل رکھ کے دیکھ لیجئے. اس کے لیے لفظ متوازی استعمال کیا گیا ہے, اس لیے کہ ذریعہ علم تبدیل ہو گیا ہے. یعنی وہاں یہ ہے, تو کوئی آدمی تنقید کر کے کہہ سکتا ہے کہ ذریعہ علم تبدیل نہیں ہوا یا اسی سے استدلال کیا جا رہا ہے. لیکن آپ اس وقت بھی جتنی بحثیں کی گئی ہیں ان کو پڑھیے اور اس کے بعد بتائیے کہ توحید وجودی قرآن مجید کی کسی آیت سے استنباط کی گئی ہے. تو یہ انکشاف اس وقت اتنا بڑا انکشاف ہوگا کہ آپ ذرا اس کا اعلان فرمائیے. کسی ناقد نے یہ جسارت کی ہے کہ وہ یہ کہے کہ قرآن یہاں پر توحید کی یہ تعریف کر رہا تھا یا اس کو توحید کے ایک درجے کے طور پر بیان کر رہا تھا, اس کا کوئی سوال نہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بھی کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے معرفت حاصل کرنے کا, اس کی نفی کی گئی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. یہ مسلمان امت کا پورا علم اس کے اوپر قائم ہے,
ایمان
توحید پر اور ختم نبوت پر. تو اس لیے ان چیزوں کو بنیاد بنا کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے مقابل میں ایک تصور ہے. اب اس کے ساتھ ان لوگوں کی بہت خدمات ہیں. وہ نحو کے عالم ہوں گے, وہ صرف کے عالم ہوں گے, وہ بلاغت کے عالم ہوں گے, وہ علم کلام کے عالم ہوں گے. ان کی اس حیثیت کو سر آنکھوں پر رکھیں گے, ان کی عزت کریں گے. اور یہ کہ ان کا کوئی کفر و ایمان کا فیصلہ ہم کریں گے, اللہ یعوذ باللہ, اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. نظریے پر گفتگو کی جائے گی اور اس میں کسی کا بھی لحاظ نہیں ہوگا.